ओम शांति। जब से बाबा के बने हम सभी ने कहा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। हमने कहा बाबा ये सब कुछ तेरा, बाबा कहते हैं स्वर्ग का वर्षा तेरा। तो जितना हम समर्पण बुद्धि बन जाएंगे, फिर मेरा कुछ नहीं रहेगा, न मेरा मन। नहीं तो हम कहते हैं ना, मेरा मन ये कहता है, मेरा विचार ये कहता हूं। अब हम कहेंगे बाबा ये कहता है। तो बाबा के मत मेरी मत हो गई, मन मत पर मत छूट गए। तो आज भी बाबा ने कहा कि जितना अपना सच्चा पोता मेल बाबा को दो कि मेरे पास क्या है, मेरी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, फिर बाबा राय देंगे कि यज्ञ में कितना दो। कोई को कहेंगे एक पैसा दो, कोई को कहेंगे मुट्ठी चावल दो, यूजुअली हम कहते हैं अपनी 10% कमाई बाबा को दो, बाबा के बॉक्स में डालो। कोई 15% भी डालेंगे, कोई 20% भी डालेंगे, तो क्या है कि बंबई में दादी प्रकाशमणि 1964 से थी, गामदेवी में एक भाई आता था, उसकी मंथली इनकम थी 100 रुपया और 10 रुपया वो यज्ञ में डालता था। दादी ने कहा तुम 90 रुपये में अपना जीवन चलाते हो। तो कहा ज्ञान के पहले मैं मांस की 10 रुपये की बीड़ी पीता था, अभी वो छूट गई तो इसलिए मैं 10 रुपया जरूर यज्ञ में डालूंगा। बम्बई में हमारे पास एक माता आती थी, बांधेली माता थी, उसका पति बैंक में मैनेजर था पर बहुत कंजूस था। पत्नी को एक पैसा नहीं देता था, सब्जी अनाज सब कुछ खुद खरीदता था। अब वो माता को यज्ञ में देना था तो उसने क्या किया, 60s में राशन होता था, राशन में अनाज सस्ता मिलता था, तो वो क्या करती थी, जो बचत होती थी अनाज की ब्लैक में बेच देते थे, और जो पैसा इकट्ठा होता था वो बाबा के बॉक्स में डालते थे। कई माताएं सिलाई करके भी बाबा के बॉक्स में डालते थे। और हमारे पास कई ऐसी भी माताएं थी जो ट्रेन का खर्चा नहीं करती थी, सेंटर पर हफ्ते में एक बारी आती थी और फिर बचत है बाबा के बॉक्स में डालती थी। तो चाहे कोई गरीब भी है परंतु दिल बड़ी है और चाहते हैं कि हमें बाबा के बॉक्स में जरूर डालना है, तो कोई ना कोई उपाय करके डालते हैं। अच्छा, जो धन नहीं डाल सकते हैं, कम से कम तन से तो सेवा कर सकते हैं, समय निकालना पड़ता है, क्योंकि तन से सेवा करने के लिए कोई ट्रेनिंग की दरकार नहीं, कोई ज्ञान में निपुणता की दरकार नहीं। ज्ञान दे सको या ना दे सको, पर तन से तो सेवा सब कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली माताओं को आदत है खाना पकाना, सफाई करना, बर्तन मांजना, कपड़े धुलाई करना, प्रेस करना, आंगन सफाई करना, और कईयों को शौक होता है तो पौधे भी घर में रखते हैं, उसमें भी पानी डालते हैं। तो विदेश में तो क्या करते हैं, उनको प्लास्टिक के फूल पसंद नहीं है, यहां तो प्लास्टिक का ये श्रृंगार किया 6 मास तक चलता रहता है, वहां फ्रेश फ्लावर रखते हैं। तो कई माता ऐसी ड्यूटी ले लेते हैं कि हम फ्लावर लाएंगे या फ्लावर की अरेंजमेंट करेंगे। कई माताएं पौधों में पानी वगैरह डालती है और वहां तो नौकर चाकर नहीं है, तो माताएं आकर सेंटर सफाई करना, खाना पकाने में मदद करना, और किचरा घर से बाहर किचरे का डब्बा ले जाना आदि आदि, वो सेवा करती है तन से। तो तन से सेवा करने से भी अपना भाग्य बनता हूं। आपको मालूम है भोली दादी भंडारे में सवेरे 4 बजे या 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक बैठते थे। जो भी आता था, जो भी मांग करता था, प्रेम से कहती थी ठीक है मना देती हूं। जब बाप दादा की पधरामणी होती थी ना, तो भी भोली दादी कई बार हमने देखा नहीं आते थे, भंडारे में ही बैठी रहते। तो बाबा भोली भंडारी का भी प्रशंसा करते हैं कई बार, कि सबको खुश करती है, प्यार से सेवा करती है। जिसने जो मांगा सप्लाई करती थी। तो धन से और तन से सेवा करनी है, वाणी से सेवा, वो भी आजकल सबको ट्रेनिंग मिलती है। मैं जब शुरू शुरू में ज्ञान में आई तो बाबा ने कहा प्रदर्शनिया समझाओ, तो प्रदर्शनी समझाते समझाते सबका गला खुल जाता था। मुरली में भी कई बार कहते हैं जब समय मिले त्रिमूर्ति गोला और झाड़ के चित्र के सामने बैठ जाओ और विचार सागर मंथन करो। और हम आए ज्ञान में तो क्या होता था, संडे संडे पब्लिक प्रोग्राम होता था, तो दादी तो मुख्य प्रवचन करती थी, परंतु हम जब नए नए आए थे हम लोग को कहा बोलो 5-10 मिनट भाषण करो, तो ऐसे करके ट्रेनिंग दे। तो 5-10 मिनट भाषण करते करते फिर आगे ज्यादा भाषण करने लगे और जब मैं ज्ञान में आई, मेडिकल प्रैक्टिस करती थी, गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो क्या हुआ कि उस दिनों में 1962 में भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था और हम सभी को गवर्नमेंट में काम करने वालों को कहा कि आपको जो नेशनल डिफेंस फंड के लिए देना चाहे आपके पगार से हम कट कर लेंगे। तो हमारे लौकिक परिवार वाले संपन्न थे और लड़की की कमाई बिल्कुल यूज नहीं करते थे, घर में रहना खाना पीना सब फ्री होता था, इतने तक कि मेरे पिताजी कपड़े के व्यापारी थे, तो साड़ियां और जो भी कपड़े थे वो भी घर में आ जाता था। तो मैं क्या करती थी, 90% इनकम हमारी नेशनल डिफेंस फंड में देती थी। फिर ज्ञान में आई, तो ज्ञान में आई मैंने कहा अभी मैं नेशनल डिफेंस फंड में क्यों दूं, हम तो यज्ञ में देंगे। तो हमने 80% हमारी इनकम यज्ञ में देना शुरू किया, 10% नेशनल डिफेंस फंड में और 10% अपनी पॉकेट मनी के लिए रखा। तो इस रीति से हमने शुरू किया। फिर जब मैंने लौकिक माँ बाप को कहा मुझे शादी नहीं करनी है, यदि मेडिकल स्टडी करेंगी शादी करके तो फिर कहेंगे घर संभालो, बच्चे संभालो, जो भी सामाजिक रूढ़ी रस्म रवाज है, व्यवहार है, आना है जाना है, बहू तुम करो। इसलिए मैंने लौकिक पिता को कहा कि मैं दो में से एक करूंगी। पिताजी ने कहा ठीक है, तुम भले पढ़ो। तो इसलिए शादी नहीं की। परंतु हमारे लौकिक पिता ने क्या किया था कि हर बच्चे को अपना बिजनेस में पार्टनर बनाया ताकि उनको इनकम टैक्स कम कर भरना पड़े। नहीं तो कहता था मेरी 90% इनकम मुझे टैक्स में भरनी पड़ी, इसके क्यों नहीं बच्चों को दें ताकि हमारे लिए कुमारियों के लिए डाउरी भी रह जाए। तो इसलिए हमारे लिए अलग रखी थी सबके लिए। फिर ज्ञान में आई, मैंने कहा मैं जो शादी तो करनी नहीं है, मेरी डाउरी की मुझे सदुपयोग करना है। और मेरी लौकिक बहनों की शादी में उन्होंने फ्लैट दिया था तो हमने कहा मुझे भी फ्लैट दो, मैं बाबा की सेवा करूंगी। तो हमारे पिताजी वैसे ज्ञान को नहीं मानते थे, ब्रह्मा बाबा को मिले, मम्मा को मिले, पर कहे ये ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है, पर सहयोगी रहे। हमने कहा कि दावरी में दे दो हमारा पैसा, तो कहा ठीक है। तो हमको कहा 1963-64 में मैं 20,000 दूंगा, तुम फ्लैट ढूंढो। पर मैंने दो फ्लैट लिए, एक फ्लैट का सेंटर बना या अरे क्लासरूम बनाया, और दूसरे फ्लैट में जैसे सिटिंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है रखा। तो 20 के बजाय 40,000 का खर्चा कर दिया, तो उन्होंने खुशी से दे दिया जो भी खर्चा हुआ। तो पिताजी ने बताया नहीं कितना मेरा पैसा है, जब मांगती थी तो दे देता था। तो विदेश में भी मैं शुरू शुरू में जब गई उन्होंने टिकट दी, जब तक विदेश के सेंटर हरे भरे हो गए और वो हमारा खर्चा करने लगे। तो दादी जान की हमेशा कहती थी कि अपनी इनकम की 10% बाबा को दो। और कई लोग हैं उनको वर्षे में कुछ मिलता था कैश, तो दादी कहती थी 1/3 अपने लिए रखो, 1/3 अपने देश में या अपने सेंटर के लिए रखो, और 1/3 मधुबन में दो, और कईयों के पास अपना फ्लैट होता था तो उन्होंने क्या किया, दादी को फ्लैट दे दिया और दादी ने उनको सेंटर में या शक्ति भवन में या रिट्रीट सेंटर में एक कमरा दे दिया। तो क्या हुआ कि यूके में कितने सेंटर खुल गए और कितने मकान बाबा ने खरीद किए। उस समय क्या होता था कि कई चर्च है वो चलती नहीं थी, इतने उनके फॉलोअर्स नहीं होते थे तो चर्च बेच देते थे और बाबा के बच्चे खरीद लेते थे। तो इसी रीत से बाबा के बच्चों ने कई अपनी प्रॉपर्टी यज्ञ को दे दी और कई सेंटर नए नए खुल गए। अभी भी कई लोग अपनी जमीन ऑफर करते हैं, मकान ऑफर करते हैं, परंतु कम नसीब की बात यह है टीचर्स कम है। अब मनसा सेवा, तो मनसा सेवा हमें स्व की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है और विश्व की सेवा करनी है। तो जो भी कार्य करो, क्योंकि आप में से कई है सेंटर में तो रहते नहीं है, परंतु यदि अपने घर में भी घर को बाबा का घर समझकर प्रेम से सेवा करेंगे तो वो भी कर्मयोग हो जाता है। और मनसा में हमें ध्यान में रखना है कि हमारे में खुद में विश्वास हो, निश्चय हो तो नर्वस नहीं होंगे भाषण करते समय। नहीं तो भाषण करना है, इतनी सामने जनता है, कई लोग नर्वस हो जाते हैं। या वीआईपी सेवा करनी होती है, समझते हैं ये तो वीआईपी है कैसे सेवा करें, परंतु जितना अपने में बाप में निश्चय है तो सेवा सहज हो जाती है। और अपनी उन्नति के लिए हमें बाबा की याद तो करनी है, परंतु कुछ मूल्यों को पसंद कर अपना नियम बनाना है और अपनी पालना मूल्यों द्वारा करनी है। दूसरों की सेवा, दूसरों की सेवा सिर्फ ज्ञान और प्रवचन देकर नहीं करनी है, परंतु उसके साथ साथ उन्हों को प्यार दो, उन्हों की संभाल करो, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है सिंपथी हरेक के लिए, शुभावना और उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को समझकर उनको जो भी सहयोग दे सको तन मन धन से देना है। और हमें ये याद रखना है कि जैसे बाबा सुखदाता है, दाता है, बाबा की कोई इच्छा नहीं रहती है कि बच्चे हमको कुछ देवे, दुनियावी माँ बाप की इच्छा रहती है कि हम बूढ़े हो जाए ना तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, पालना करें, कमाई करके हमको खिलाएं पिलाएं, और शरीर ठीक नहीं है तो हमारी संभाल करें। अभी हमें भी क्या करना है, दाता मांगता नहीं, देते रहो सबको, और हरेक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, श्रेष्ठ भावना हो। किसी का अवगुण नहीं देखना है, और मालूम है इसमें क्या कमी है तो शुभ भावना से उनको उठाओ। मामा हमेशा कहते हैं गिरे हुए को लात नहीं लगाओ, गिरे हुए को मदद करके ऊंचा उठाओ। तो कोई भी संजो विकारी है, कैसे भी है, उनको तिरस्कार घृणा की दृष्टि से नहीं देखो, शुभ भावना से देखो। और जो भी सेवा करो रहम दिल से सेवा करो कि ये बाबा के बच्चे हमारे भाई बहन दुखी है, क्यों नहीं हम उनको मदद करें। नाम मान शान की कामना ना हो, कॉम्पिटिशन ना हो, कंपैरिजन ना करो कि इसने इतनी सेवा की है मैं भी करके दिखाऊं, नहीं, प्यार से रहम दिल से सेवा करो। और जितनी मेरी स्थिति ऊंची होंगी, याद के द्वारा क्या होता है, हमारी स्थिति ऊंची होती है। तो क्या है, हम औरों को मदद कर सकते हैं, क्योंकि संसार में सबके पास कुछ न कुछ विघ्न है, चैलेंज है, प्रॉब्लम है, पर हमारी स्थिति ऊंची है, हम उनको उठा सकते हैं। और विश्व की सेवा करनी है मन से, हम वर्ल्ड मेडिटेशन आवर करते हैं, तीसरे संडे को एक घंटा सारे विश्व में 6:30 से 7:30 योग करके शांति का प्रवाह फैलाते हैं। तो जितना हम हो सके सिर्फ हफ्ते मास में एक दिन नहीं, रोज शाम को, सवेरे अपने लिए कमाई करो अमृत वेला और जो समय है, पर शाम को क्या करो, योग में शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा कहते हैं दुखियों की पुकार सुनो। कितने लोग दुखी हैं, उनको सुख के वाइब्रेशन दो। और मैं करता हूं ये बुद्धि में ना हो। बाबा करारवनहार है, मैं निमित्त हूं। और हम समझ सकेंगे जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होंगी कि बाबा क्या करता है और ड्रामा क्या करता है। मुझे बाबा को साथी बनाकर क्या करना है। तो जितनी साइलेंस की शक्ति हम भरेंगे तो कैसी भी परिस्थिति होंगी हम अचल और अडोल रहेंगे। और परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, विघ्न आएंगे पर हम विघ्नों को पार कर लेंगे। और अंत में तो मनसा सेवा ही रहेंगी, वाचक सेवा कराने का या कोर्स कराने का या भाषण देने का टाइम न होगा, न हमको टाइम होगा, न सुनने वाले आ सकेंगे। बाबा कहते हैं इतनी विकट परिस्थिति होंगी कि लोग गली क्रॉस करके भी सेंटर पर आ नहीं सकेंगे। और बहुत भारत में तो प्राकृतिक आपदा, सिविल वॉर, उसके कारण बहुत गड़बड़ी होंगी। तो उस समय जितनी हमारे में योग की शक्ति होंगी तो हम परिस्थिति को भी पार कर सकेंगे और फरिश्ता स्वरूप बन सेवा करनी है। बाबा कहते हैं अंत में यही सेवा होंगी, अपने चेहरे चाल चलन और फरिश्ता रूप से उनको आप उनके इष्ट देव का साक्षात्कार कराएंगे और उन्हों की रक्षा करेंगे। फरिश्ता अर्थात किसी से रिश्ता नहीं, एक बाप से रिश्ता। और फरिश्तों को दिखाया गया है कि लोगों को मदद करता है, रक्षा करता है, गाइड करता है। कईयों ने अपना अनुभव सुनाते हैं। एक 6 साल की बच्ची थी, माँ के साथ जाती थी तो रास्ते में गिर गई और वहां ही सुअरेज का ढक्कन नहीं था तो बस 1 इंच के लिए बच गई। पर उसको उस समय साक्षात्कार हुआ कि फरिश्ते ने उसको बचा लिया। फिर उसने मां को कहा, मां तुमने देखा ये फरिश्ता? मां ने कहा मैंने तो नहीं देखा। और एक माता अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर गई, पर उसको बच्चों के लिए अति प्यार था। तो क्या करती थी, मरने के बाद भी फरिश्ता बनकर रोज रात को आकर जो वॉश बेसिन में बर्तन गंदे पड़े होते थे माँ आकर साफ करके रख जाती थी, तो सवेरे सब बर्तन साफ मिलते थे। और नेचुरली है, योग पावरफुल होने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। तो उस जितनी हमारे में पवित्रता है, योग की शक्ति है, तो हम बाबा को विश्व परिवर्तन में मदद कर सकते हैं। बाबा भी कहता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे तुम सब बच्चों की मदद चाहिए पतितों को पावन बनाने के, दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए, प्रकृति को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना हमारे योग बल से। तो हम जितना अपने को बाबा के राइट हैंड समझेंगे उतना हम बाबा की सेवा में मदद करेंगे, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, चाहे धन से। क्योंकि आज भी बाबा ने कहा जिनके पास धन है वो क्या करते हैं, कोई कॉलेज खोलते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं, कोई मंदिर बनाते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं। तो वहां तो एक का एक गुना मिलता है और यहां एक का पदम गुणा, जो ईश्वर अर्थ करते हैं, डायरेक्ट ईश्वर को देते हैं, वो अपना 21 जन्मों का भाग्य बताते हैं। तो एक तो हमारा भाग्य था कि हमको बाबा ने उठाया, पर अब भी जितना पुरुषार्थ करेंगे सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली हम बन सकते हैं। तो इसलिए जो भी कर सको करते जाओ, अपना भाग्य बढ़ाते। ओम शांति।